ओम शांति। दादी जी के साथ का अनुभव परम आदरणीय दादी जी का जीवन एक खुली पुस्तक की तरह था, जो जितना उस पुस्तक को पढ़ें उतना ही उससे वो पाएं। दादी जी जिससे भी मिलती थी, जो भी रोल प्ले करती थी, उसमें एकदम रम जाती थी। इसलिए मधुबन में आने वाले छोटे बड़े भाई बहने कहते थे, दादी जी तो हमारी दादी माँ है। कुमार कहते थे, दादी जी कुमारों की कुमार का है। टीचर कहते थे, दादी जी हमारे लिए रोल मॉडल हैं। गृहस्थी में रहने वाले कहते थे, दादी जी से हमें प्रेरणाएं और शिक्षाएं मिलती हैं। तो ऐसी दादी जो विभिन्न गुणों से और शक्तियों से संपन्न थी, उनकी जितनी भी महिमा करें कम ही होगी। मुझे आदरणीय दादी जी के साथ मधुबन में 30 वर्षों तक रहने का चांस मिला और मैंने दादी जी के व्यक्तित्व के हर पहलू को बड़े बारीकी से देखा और उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा। तो आइए दादी जी के जीवन की अन छुए पहलू के बारे में चर्चा करें। पहली बात, दादी जी विशाल हृदयता की बेमिसाल थी। मुझे याद है, मैं 1976 में पहली बार मधुबन में सेवाधारी के रूप में आया था। एक दिन मधुबन निवासियों के साथ दादी जी पिकनिक करने गई थी। मुझे भी उसमें जाने का सौभाग्य मिला। तो मैंने देखा दादी जी सभी ब्रह्मावसों के साथ बड़े प्यार से, बड़े खुले दिल से, अच्छी तरह से खेल पाल कर रही है, सबको बहला रही है। तो मैंने सोचा जीवन हो तो ऐसा हो, किसी प्रकार की फिक्र नहीं है, मौजों की जीवन है। तो उस घटना से मुझे समर्पित होने की प्रेरणा मिली। तो मैंने दादी जी से पूछा कि मेरी इच्छा मधुबन में समर्पित होने की है। तो दादी जी ने कहा, आप इतने पढ़े लिखे हो, मधुबन में तो स्थूल सेवा होती है, आप अपने सेवा केंद्र पर नागपुर में जाकर वीआईपी सेवा करो, वो अच्छा रहेगा। लेकिन मेरी अंदर से लगन थी, तो मेरे जीवन की सादगी को, लगन को और दृढ़ता को देखकर दादी जी ने मुझे समर्पित होने की स्वीकृति दी। और उनके हृदय की विशालता देखो। मेरे से जो मेरा लौकिक बड़ा भाई ज्ञानेश्वर है, उसने कहा कि घर में तो माता पिता ही है, तो अगर हमें समर्पित होने का चांस मिलेगा तो बहुत अच्छा है। तो दादी जी से पूछा तो दादी जी ने स्वीकृति दी कि हाँ जरूर समर्पित हो सकते हैं। तो 1982 में लौकिक कारोबार समेट कर माता पिता और बड़ा भाई मधुबन में समर्पित हुए। तो दादी जी का दिल बहुत बड़ा था, विशाल था। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी जी ने इस यज्ञ को 38 वर्षों तक संभाला और आगे बढ़ाया। तो दादी जी लगभग हर रोज बाबा से प्रेरणा प्राप्त करती थी अमृत वेले योग में, योगाभ्यास के बाद। और जब भी मुरली सुनाने आती थी तो पहले बाबा की टचिंग सबके साथ शेयर करती थी और उस टचिंग को प्रैक्टिकल में लाती थी। इस तरह से दादी जी ने यज्ञ को आगे बढ़ाया, सेवा का विस्तार किया। दादी जी उमंग उत्साह की अविरल गंगा थी, हमेशा उमंग उत्साह में मस्त रहती थी। जब दादी जी डायमंड हॉल की स्टेज पर आती थी और हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेकर सभा के तरफ घुमाती थी, गीत बजता था, जाने क्या देखा तूने मुझ में, मुझको प्यार किया, तो 20-25 हजार की सभा उमंग उत्साह में झूम उठती थी। तो दादी के दिल का सच्चा प्यार उनके दिल को छू लेता था। और दादी जी मुरली पढ़ने में माहिर थी। मुरली सुनाते समय अलौकिक मस्ती में खो जाती थी और सभी को मुरली का दीवाना बनाती थी। सब झूम उठते थे। तो एक दादी जी को वरदान था। दादी जी ब्रह्मा वसो का, यज्ञ वसो का पूरा ध्यान रखती थी। अमृत वेले योगाभ्यास के समय किसी भाई या बहन को भेजती थी, जाके देखो कोई भाई या बहन सोया तो नहीं है। मुरली के समय किसी को भेजती थी, जाओ कोई अपने कमरे में लेटा तो नहीं है। अगर सोया होता था, लेटा होता था, तो उसको बुलाकर शिक्षा सावधानी देती थी। तो दादी जी यज्ञ वसो को ये रियलाइज कराती थी कि ब्राह्मण जीवन में उन्नति के स्तंभ योग अमृत वेले का और मुरली है। दादी जी का पारिवारिक प्रेम अनुपम था। जब भी भोजन का मेन्यू बनाती थी तो यज्ञ वसो के तबीयत का ख्याल रखकर, सेहत का ख्याल रखकर उनको अच्छी तरह से भोजन पौष्टिक मिले, इस पर ध्यान देती थी। और भोजन के समय भी दादी जी चक्कर लगाकर देखती थी कि सभी को भोजन ठीक से मिल रहा है या नहीं। कोई भाई बहन प्यार से यज्ञ में फल लाता था तो दादी जी कहती थी पहले बाबा के बच्चे खाएंगे फिर दादी खाएगी। इतना प्यार यज्ञ वसो के साथ दादी जी का था। दादी जी एक श्रेष्ठ लीडर थी। दादी जी ने किसी को अपना फॉलोअर नहीं बनाया, कईयों को लीडर बनाया। आत्माओं के विशेषताओं को जानकर उनको आगे बढ़ाने की कला में दादी जी पारंगत थे। मुझे याद है ये घटना लगभग 85 की होगी। विदेशी भाई 1200 मधुबन में थे और मैं सवेरे से लेकर शाम तक आलू के चिप्स उनके लिए किचन में बना रहा था। लकड़ियों का चूल्हा था, सवेरे से रात शाम तक काम करते थक चुका था, अकेला था, लेकिन दादी जी किचन में आई, आकर मेरे सामने खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए कहने लगी, हेलो आतम दादा कैसे हो? बापरे बापरे, हेलो और आतम दादा, मैं तो नया छोटा सा व्यक्ति हूं, मुझे इतना रिगार्ड संस्था की मुखिया दे रही, मैं तो एकदम पागल हो गया। दादी पर जैसे बलिहार हो गया। दादी मुझे कोई भी सेवा करने के लिए आधी रात को भी बोलेगी, मैं दौड़ा दौड़ा सेवा करने जाऊंगा। दादी को दूसरों के दिल को जीतने की कला थी। कभी कभी मैं किचन में टोली बनाकर सामने बैठता था तो दादी जी चुपके से आती थी तो कहती थी, हे आतम पंछी कहां उड़ रहे हो? मैं बाबा की याद में खोया रहता था तो आतम पंछी के नाम से भी दादी मुझे पुकारती थी। दादी जी ज्ञान की अखुट भंडार थी। मुरली के हर एक महावाक्य की गहराई में जाती थी और स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करती थी और अनेकों को भरपूर करती थी। मैंने दादी जी का 5-6 बार इंटरव्यू लिया उनके कमरे में जाकर, ज्ञानामृत पत्रिका के लिए आर्टिकल लिखने के लिए, और जो भी मैं उनको प्रश्न पूछता था तुरंत दादी जी जवाब देती थी। मुझे एहसास होता था कि दादी जी के रग रग में ईश्वरीय ज्ञान समाया हुआ है। तो दादी जी कुमारों की विशेष पालना करती थी। मैंने दादी जी से प्रश्न पूछा था कि दादी जी आप कुमारों की इतनी पालना क्यों करती है, क्या कारण है? तो दादी जी ने कहा, देखो कुमार बाबा के बच्चे बने हैं, उन्होंने अच्छा पहनना छोड़ा, अच्छा खाना छोड़ा, अलौकिक घर में रहते हैं, भोजन बनाने की भी दिक्कत कभी होती है, तो मधुबन में वो आएंगे तो उनको हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। कहां जाएंगे वो? तो जैसे कुमारों का ग्रुप भट्टी के लिए मधुबन में आता था, दादी जी का उमंग उत्साह बहुत बढ़ता था और दादी जी कुमारों के लिए गुलाब जामुन, आलू के चिप्स, समोसे, पकोड़े, आइसक्रीम क्या क्या नहीं बनाती थी। सोचती थी कुमार बाबा के घर से संतुष्ट होकर जाएंगे तो बाबा की बहुत सेवा करेंगे। इसलिए दादी का नाम कुमारों की दादी कुमार का पड़ा। पहले से ही दादी का नाम कुमार का था, लेकिन विशेष कुमारों की पालना दादी करती रही। दादी जी की जो निरहंकारिता थी वो बेहद थी। एक बार धर्म सम्मेलन ओम शांति भवन में मधुबन में हो रहा था, काफी सारे महामंडलेश्वर उस सम्मेलन में आए थे और जाते समय एक मंडलेश्वर स्टेज पर अनुभव सुना रहा था कि संस्था की जो हेड होती है उसके मिलने के लिए विशेष अपॉइंटमेंट ली जाती है, लेकिन यहां मैंने देखा दादी जी बड़े सरलता से और बड़ी सहजता से मिलती है। मुझे दादी जी मधुबन के आंगन में बैठकर मिली, संस्था की मुखिया, और इतनी सिंपल, इतनी सरल। वो छाप मेरे दिल पर अमिट लग गई, मैं उसको भुलाना चाहूं तो भी नहीं भूल सकती। इतनी निरहंकारिता दादी में थी। दादी जी रहम दिल और दाता थी। एक बार पंजाब से स्कूली बस आबू दर्शन के लिए आई थी और जैसे पांडव भवन से वो जा रही थी तो अचानक खाई में वो गिर गई। छोटे बच्चों को बहुत चोटें आई तो दादी जी ने तुरंत मधुबन निवासियों को भेजा, जाओ उनको मदद करो, और बच्चों को मधुबन में लेकर आई पांडव भवन में और उनको दवाई आदि कराई और ब्रह्मा भोजन भी उनको खिलाया। जब कच्छभुज में भूकंप हुआ था तो दादी जी ने उनके लिए विशेष सामग्री भेजी और डॉक्टरों का दल भी भेजा पीड़ितों को मदद करने के लिए। तो दादी जी के दिल में रहम दिल की भावना और दातापन की भावना हमेशा पनपती थी। दादी जी की सादगी बेमिसाल थी। सारा जीवन दादी जी सादगी में रही। कम खर्च बाला नसीन, ये दादी जी का स्लोगन था। और मेरे होते हुए नकी लेक दो बार सूख गई, बारिश नहीं आई। तो जब नकी लेक सूख गई तो दादी जी सभी मधुबन निवासियों को वहां लेकर गई वहां की मिट्टी खोदने के लिए। खुद खड़ी होकर मिट्टी खुदवा रही थी और गाड़ी में ट्रैक्टर में भर रही थी। बाबा के बगीचे के लिए खाद मिले। मैंने सोचा इतनी बड़ी दादी और कितना सिंपल काम कर रही है, मिट्टी ढो रही, मदद कर रही है। तो ये दादी जी के सादगी का मिसाल था। दादी जी ने मधुबन निवासियों का इतना दिल जीता था। शांति स्तंभ के पास एक झाड़ है, वहां एक घंटा रखा है। कोई भी इमरजेंसी बात होती थी, जैसे घंटा बजता था सारे मधुबन निवासी दौड़कर भागकर आते थे। शांति स्तंभ पर अनाज की बोरिया फैलाई है सुखाने के लिए, अचानक बारिश आई, सभी भाई बहने दौड़कर आते थे दादी जी के एक के इशारे पर। तो दादी जी सभी को एकता के सूत्र में बांधने में बहुत होशियार थी। मैंने देखा बीमारी के समय भी दादी जी मुस्कुराती थी। कहती थी ये देह तो गाड़ी है ना, मैं आत्मा इसको चलाने वाला ड्राइवर हूं, तो चालक अगर अच्छा है तो कैसी भी गाड़ी हो वो उसको मैनेज कर लेता है। तो देह में रहते हुए भी दादी विदेही स्थिति में सदा स्थित रहती थी। देह में रहते हुए दादी जी हमेशा उपराम रहती थी। अंतिम दिनों में दादी जी के सामने पेपर आया शरीर का, उस पेपर को भी दादी जी ने हंसते हंसते पार किया और उसमें पास हो गए। दादी जी अथक और निर्माण चित्त थी। सन 2000 की बात है, मैं रशिया और अमेरिका और मेक्सिको कनाडा के तरफ 8-10 देशों में सेवार्थ जा रहा था। मैंने सोचा दादी जी के आशीर्वाद लूं, छुट्टी लूं। जैसे मैं कॉटेज में गया शांतिवन में, तो बाहर बैठी हुई बहन ने कहा दादी जी से मिल नहीं सकते, दादी जी की तबीयत ठीक नहीं। जैसे दादी जी ने अंदर से आवाज मेरी सुनी, मुझे अंदर बुलाया और इतनी पावरफुल दृष्टि दिया और अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा। तो दादी जी की उस पालना का इतना रिजल्ट मुझे मिला, विदेश की सेवा में मुझे बहुत अच्छी सफलता मिली। विदेश की सेवा करने के बाद ओम शांति भवन के स्टेज पर मैं बाप दादा से पर्सनली मिल रहा था, तो बाबा ने कहा था सेवा में अच्छी सफलता प्राप्त करके आए हो, जमा का खाता बढ़ाकर आए हो, मनसा सेवा में अच्छी सफलता मिली और मिलती रहेगी, ये बाबा का वरदान था। तो मैंने देखा दादी जी हमेशा कहते थे निमित्त निर्माण और निर्मल बनो, ये स्लोगन दादी जी का था। लेकिन उसके पहले मैं एक जादुई मंत्र दादी का आपको सुनाता हूं जो मैंने ऑब्जर्व किया। दादी जी विश्व की लीडर बन गई। ज्ञानी तो छोड़ो, अज्ञानियों के दिल पर भी बेहद छाप लगा कर गई। दादी जी का एक ही मंत्र था, छोटों को प्यार और समान वाले और बड़ों को सत्कार। इस मंत्र से दादी सबके दिल पर छाप लगा कर गईं। हम छोटों को प्यार भी देते हैं, बड़ों को सत्कार भी देते हैं, लेकिन समान वाले जब हमें मिलते हैं तो सत्कार देने में हम थोड़ा सा हिचकते हैं। मैं क्यों उसको रिगार्ड दूं, वो मुझे देवे। लेकिन दादी जी समान वालों को और बड़ों को भी सत्कार देती रही। दादी जी ने कहा था अगर दादी जैसा बनना चाहते हो तो दो शब्दों को जीवन में धारण करो, सदा सम्मान में रहो और सबको सम्मान देते रहो। ऊंची शान में सदा सम्मान में रहो। बाबा ने हमें ये सम्मान के सिंहासन दिए हैं, उसको यूज करो और सबको सम्मान देते रहो। छोटा हो बड़ा हो सबको सम्मान देते रहो तो लोकप्रिय बनते जाओगे। तो मैंने देखा दादी जी का जीवन ब्रह्मा बाबा की तरह बन गया था। ब्रह्मा बाबा की फोटो कॉपी दादी जी बन गई थी। ब्रह्मा बाबा जाने के बाद उनकी कमी दादी ने किसी को महसूस होने नहीं दी। मास्टर ब्रह्मा बनकर सबको पालना देती रही। तो दादी जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। मैंने देखा जब भी हम कुछ काम करते थे दादी जी हमें प्रोत्साहन देती थी, बहुत अच्छा कर रहे हो और अच्छी तरह से करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो बहुत निर्मल वाणी, निमित्त भाव हमेशा अनुभव करती थी। मैंने एक बार दादी जी को पूछा कि दादी जी आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर यज्ञ की चल रही है, 5-7 हजार सेवा केंद्र का संचालन कर रही है, लेकिन मैंने आपके चेहरे पर कभी भी टेंशन नहीं देखा, हमेशा आपका चेहरा लाइट रहता है, खिला हुआ रहता है, मुस्कुराता रहता है। इसका राज क्या है मुझे बताइए। तो दादी जी ने कहा, देखो आतम भाई, सबसे पहले तो मैं निमित्त समझती हूं, मैं केवल कठपुतली हूं, मैंने अपनी बुद्धि रूपी रस्सी उसके हाथ में दी है, जैसे बाबा चाहते हैं वैसे मैं सेवा करती हूं, इसलिए लाइट रहती हूं। अगर मैं जिम्मेदार हूं ऐसा समझेंगे तो बाबा की मदद पाने से हम वंचित रहते हैं, लेकिन निमित्त समझने से बाबा हमें मदद करने के लिए आते हैं और हम 1 से 2 बन जाते हैं और सदा लाइट रहते हैं। जिस कार्य को हम करते हैं वो कार्य बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ता है। और दूसरी बात कहा, मेरे एक कंधे पर ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में और दूसरे कंधे पर ब्रह्म शिव बाबा सर्वशक्तिवान हमेशा मैं अनुभव करती हूं। दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली फोर्सेस मेरे पास रहते हैं, उसके कारण हर कार्य में मुझे सफलता मिलती है, कोई विघ्न भी आता है विघ्न पार हो जाता है। दादी जी का एक स्लोगन था, कोई भी समस्या, इतना बड़ा यज्ञ था तो समस्या विघ्न तो आएगा ना, लेकिन मैंने देखा जब भी विघ्न आता था या समस्या आती थी तो दादी जी कहती थी, करो तपस्या मिटे समस्या, बस ये मंत्र दादी जी का था। तपस्या करना अर्थात सर्वशक्तिवान बाप को उसमें डालना। अब जिस कार्य में सर्वशक्तिवान का साथ होगा उस कार्य में हमें सफलता न मिले ये हो नहीं सकता है, लेकिन हमें उस समय बाबा की याद रहें और बाबा की मदद हम लेते रहें तभी समस्या को हम पार कर सकते हैं। तो मैंने देखा मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे दादी जी ने शिक्षा सावधानी दी। दादी जी लवफुल भी थी और लवफुल भी थी, इतनी लवफुल कि वात्सल्यमयी मां का प्यार हमने दादी जी से अनुभव किया, जो लौकिक मां से भी नहीं मिला वो दादी जी से हमने प्यार अनुभव किया। ठंडी के दिनों में दादी जी अपने हाथ से सभी मधुबन निवासियों को मक्खन माणी खिलाती थी, हम रोटी बनाते थे मक्खन डालते थे, दादी जी उसको हाथ में लेकर मुंह में खिलाती थी, कितना प्यार। लेकिन अगर कोई भूल करता है, कोई मर्यादा का उल्लंघन करता है तो दादी लाफुल भी बहुत थी, क्लास में उसको व्यक्ति को खड़ा होकर कहती थी, आपको बाबा सजा देता है, जाओ बाबा के रूम में जाओ और 6 घंटा या 8 घंटा तपस्या करो, ये आपको सजा है। अब बाबा के रूम में जाएगा व्यक्ति, बाबा के सामने बैठेगा, बाबा से रूहान करेगा तो अपनी कमी को जरूर रियलाइज करेगा, और रियलाइज करने के बाद उसको परिवर्तन करने का भी प्रयास करेगा। तो दादी सोचती थी इस शिक्षा से इसके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। तो इसलिए जितनी लावफुल उतनी लवफुल दादी जी थी। और हमने देखा जब भी विदेशी भाई बहने आते थे, अचानक क्लास में कहती थी ओम शांति भवन में कि आतम भाई विदेशियों के लिए इतने 1000 गुलाब जामुन बनाना है, और जैसे मैं सुनता था फटाफट सेवा में लगता था और चीज तैयार। तो दादी जी की आज्ञा को हम बाबा की आज्ञा मानकर चलते थे। इसलिए हमें बाबा के दिल की दुआएं हमें बहुत मिली। तो मैंने देखा 5 वर्षों तक मैंने भोजन मधुबन में बनाया। उस समय टोली जास्ती नहीं बनती थी। 1980 में दादी ने मुझे बुलाया और दादी जी ने कहा, अभी मेरा विचार है टोली डिपार्टमेंट को खोलने का, शुरू करने का, आप संभालोगे? मैंने कहा दादी जी बिल्कुल संभालूंगा। तो 80 से लेकर मैं टोली डिपार्टमेंट संभाल रहा हूं, और उसके कारण देखो, उसके कारण दादी जी का तो आशीर्वाद मुझे मिलता ही रहा, लेकिन बाबा का भोग भी बनाने का मुझे चांस मिलता रहा। और आप विश्वास नहीं करोगे कि बाबा को इन हाथों से 20-25 बार गोल्डन स्पून से मैंने खिलाया, और बाबा ने मुझे अपने मुख में 20-25 बार टोली खिलाई। ये कितना बड़ा भाग्य है, क्योंकि साकार मुरली में हम सुनते थे आगे चलकर ऐसे कुछ बच्चे आएंगे जो भंडारे में योग युक्त भोजन बनाएंगे, और जब मेरे बच्चों को योग युक्त भोजन मिलेगा ये सेवा बहुत बढ़ेगी। तो जैसे हम सेवा में आए, दादी जी ने हमें भंडारे की सेवा दी, और उस सेवा में हम बहुत आनंद अनुभव करते थे। एक बार थोड़ा सा मन में लगा कि इतनी डिग्री लेने के बाद ये क्या सेवा कर रहे हैं, भोजन बनाने की सेवा कर रहे हैं। बाबा से पर्सनल मुलाकात हुई, बाबा ने पूछा खुश हो? मैंने जवाब नहीं दिया। बाबा के रूम में बाबा आए थे, क्या बात है? मैंने कहा बाबा देखो, मैं इतना पढ़ा लिखा और मुझे इन्होंने किचन में सेवा दी। बाबा मुस्कुराए, अच्छा। तो बाबा ने एक राज मुझे बताया कि जो भी बाबा के बच्चे मधुबन में आते हैं, जितना दिन रहते हैं, और उनको जब योग युक्त भोजन और टोली मिलती है, उनकी स्थिति की प्रोग्रेस होती है, जो जितनी उनकी अविनाशी कमाई होती है, उस कमाई में से कुछ हिस्सा भोजन और टोली बनाने वालों के नाम पर ऑटोमेटिक ट्रांसफर होती है। मैंने कहा बैठे बैठे इतनी कमाई हो रही है, तो मेरा किचन से जैसे कि लगाव हो गया, और किचन से मुझे अथक सेवाधारी भाव का वरदान मिला, पवित्रता भाव का वरदान मिला। क्या करता था मैं, जब दिन भर में सेवा करता था और रात को ट्रेनिंग सेक्शन जो स्टावरा पीस के पास है उसके छत पर जाकर अशरीर स्थिति का अभ्यास करता था, तो पहरे वाले ने दादी जी को ये बात बता दी कि ये रात को जागता है वहां अभ्यास करता है। तो दादी जी ने मुझे बुलाया, आओ इधर, आप रात को जागते हो? मैं कहा हाँ दादी। कल से ऐसा नहीं करना, देखो सारा दिन आप सेवा करते हो, रात को वहां जागोगे, कल बीमार पड़ोगे तो कौन आपकी सेवा करेगा? जैसी मां अपने बच्चे को प्यार से शिक्षा देती है ना, ऐसी दादी मुझे शिक्षा दे रही थी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि दादी जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और मैंने उसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी किया। तो 2 अगस्त 2007 में मैं रशिया सेवा अर्थ गया था, दादी जी से छुट्टी लेकर गया था। दादी जी ने मुझे आशीर्वचन भी दिया, वरदान भी दिया, और सेवा करके 25 अगस्त को रशिया से वापस आया मधुबन। और जैसे वापस आया मैं दादी कॉटेज में गया और दादी के दर्शन किए, और कुछ घंटों के बाद दादी जी अव्यक्त हुए। तो मैंने कहा देखो ड्रामा कैसा है, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए इतनी मदद किया, उस परम श्रद्धेय परम आदरणीय दादी जी के दर्शन तो मुझे मिले, बहुत खुशी हो रही थी। तो ऐसे परम आदरणीय दादी जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना, अर्थात दादी जी के शिक्षाओं को जीवन में धारण करना, उनके पद चिन्हों पर चलना, उनकी विशेषताओं को गुणों को जीवन में धारण करना, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो कईयों को ऐसा लगता है ब्रह्मा बाबा को हमने साकार रूप में नहीं देखा। मुझे शुरू शुरू में बहुत फील होता था, 72 में ज्ञान में आया तो क्या कलब कलब हम बाबा से नहीं मिल पाएंगे? लेकिन बाप दादा से, अव्यक्त बाप दादा से कितनी बार मिले, और दादी जी की जो पालना हमें बाप समान मिली, उसके कारण जो अंदर भावना थी कि हमने बाबा को मिस किया, वो भावना खत्म हो गई। जो कुछ हमने पाया बाबा से पाया, वो दादी से भी हमने पाया, हमें मिला, तो खुद को संतुष्टता की अनुभूति होती है, समझा? तो इसलिए हमें अभी दादी डे आ रहा है, दादी डे पर यही संकल्प करना है, दृढ़ संकल्प करना है कि दादी जी जैसा श्रेष्ठ जीवन, धारणा युक्त जीवन हमें भी बनाना है। ओम शांति। नागपुर में 75 में दादी जी मेला का उद्घाटन करने के लिए आई थी, तो वहां 40 कुमार सेवा में थे और सबसे आगे मैं था। तो दादी जी देखने लगे, ये कुमार तो बड़ा एक्टिव है। तो दादी जी ने मुझे बुलाया, तो क्या नाम है आपका? मैंने कहा निवृत्ति। निवृत्ति? तुम सन्यासी है क्या? तुम्हारे में इतने गुण है, इतनी विशेषता है, आज से तुम्हारा नाम आत्म प्रकाश। कितनी तुम्हारे में विशेषता है। तो सेंटर वाले कहने लगे, हमको भोग खिलाओ, नहीं तो हम तो पुराने नाम से ही बुलाएंगे, अब पैसे कहां से लाऊं भाई? जैसे स्कॉलरशिप मिल गई, सेवा केंद्र पर दीदी को दिया, सबको भोग खिलाया और आत्म प्रकाश नाम हो गया। और फिर यहां 76 में आए तो दादी जी ने नाम दिया था, तो यहां पर भी दादी जी उसी नाम से पुकारने लगी, आत्म भाई आत्म भाई आत्म भाई। तो वो निवृत्ति माना सन्यासी, तो वह सन्यासी ऐसा लगता है पुराने पिछले जन्म का नाम है, इस जन्म का नाम आत्म प्रकाश है। हाँ, उस नाम से कई काम भी होते गए। जी जी भाई साहब, थैंक यू, ओम शांति।